रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुनिसब संत नमो हरि रामामुर भवन में या पद समान को अदम जीव तुम तारिया तुम ही तारे संत अब किरपामो पर करहु यो हरिदेव कंत। सदगुरु से दीवी नदी परब्रह्म सुपरनाम अनंत कोटि संत रामदास निष दिन करूं सलाम। नमो राम गुरुदेव दी जनत्रि काल के बंद विघ्न हरण मंगल करण रामदास आनंद। बैसाख सुदी दूज संवत 1995 कर्णवास एकांत जंगल में दिनांक 2 मई 1938 सेठ जीरो लेख है। शीर्षक है स्वाद भोग आराम की बुद्धि का त्याग, इसका नाम वैराग्य है। भोगे हुए सुख के संस्कार फिर पतन में कारण बनते हैं। यहां सत्संग में जो मारवाड़ियों के सिवा दूसरे भाई लोग आवे उनके आदर पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने जाति वालों पर एवं जान पहचान वालों पर तो स्वाभाविक ही प्रेम रहता है, पर दूसरों का आदर होने से संसार में सत्संग का प्रचार अधिक हो सकता है। अभी हम जो कर रहे हैं ये कोई विशेष महत्व की बात नहीं है। हम भोजन बनाते हैं और हम ही भोजन करते हैं। प्रसन्नता तो यह है कि हम भोजन बनावे दूसरों को खिलावे, और उसमें यदि स्वतः हमको भूखा रहना पड़े तो प्रसन्न हो जाए कि आज तो हम निहाल हो गए। वस्त्रों की भी आवश्यकता हो तो दूसरों को पहले पूरी करो। इसी प्रकार हरेक भाई प्रसन्नता से काम करे। कहने का मतलब है कि हम ज्यादा कष्ट सहकर दूसरे को आराम दें। इसमें यदि जयदयाल नाराज हो जाएंगे, इस दबाव से यदि प्रसन्न नहीं कर सके तो मुझे प्रसन्न रखते हुए सेवा करें तो इस प्रकार से शीघ्र मुक्ति हो जाती है। अपना तन मन धन रुपया शरीर अपने अधिकार की अपनी वस्तु दूसरे के लिए निसंकोच काम में लावे तो समझो उतनी दूर तक उतने अंश तक वह अपने प्रेमी भगवान के शरण चला गया। उसको जो प्रसन्नता होती है वो प्रसन्नता भगवान की समझनी चाहिए। कोई अच्छा आदमी सेवा करना नहीं चाहता, कोई अच्छा आदमी सेवा कराना नहीं चाहता, और कोई करे तो उनकी बात मानकर नहीं करने में ही लाभ है। जबरदस्ती सेवा करने से लाभ नहीं है। जबरदस्ती सेवा के बहाने से अपना लाभ सोचकर यदि कोई क्रिया करता है और अगले का चित्त दुखता है तो ऐसी अवस्था में सेवा नहीं करने में ज्यादा लाभ है। अर्थात पीछे पड़कर सेवा मत करो जबरदस्ती। वैराग्य और उपराम की बड़ी जरूरत है। चाहे ज्ञान मार्ग में चलो चाहे भक्ति मार्ग में चलो। भक्ति मार्ग में भगवान में प्रेम रखेगा उसका वैराग्य अपने आप हो जाएगा। संसार में राग द्वेष का त्याग सभी जगह करना है। गीता अध्याय 11 श्लोक 54, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त है संग वर्जित है निर्वैर सर्वभूतेषु ये समामेति पांडवे, 55वां श्लोक है कि संग वर्जित है, किसी के साथ राग मत करो, निर्वैर है, किसी के साथ भीतर में बैर मत रखो। देखो आपका भक्ति का मार्ग कितना सुगम हो जाता है। बैर और संग का त्याग राग द्वेष का ही त्याग है। यानी सभी सिद्धांत में राग द्वेष का त्याग होना चाहिए। संसार के विषयों से वैराग्य रहना चाहिए। लोग समझते हैं वैराग्य का अर्थ है सब कुछ छोड़ दो और घर छोड़ के भाग जाओ। इसका नाम वैराग्य नहीं है। त्याग हट से भी होता है, त्याग भय से भी होता है, त्याग विचार से भी होता है और त्याग भगवत प्रेम में अधिकता हो तो होता है। हम कहते हैं आसक्ति का त्याग करो, घर के त्याग से, कुटुंब वालों को त्याग के बदले दुख देने से कोई लाभ नहीं। परमात्मा की प्राप्ति होती है तब आसक्ति रह नहीं सकती, एकदम नष्ट हो जाती है स्वाभाविक ही। वैराग्य और त्याग अलग अलग है। किसी आश्रम या त्याग का नाम वैराग्य नहीं है। कोई साधु वैरागी संप्रदाय में हो गया तो वैराग्य हो गया, नहीं होगा। साधु का तो स्वांग ही वैराग्य का है, उसमें वो वैराग्य नहीं माना जाएगा। किंतु राग के त्याग का नाम वैराग्य है। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राभिशुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। चारों वर्णों में चारों आश्रम में वैराग्य का संबंध अंतःकरण से है, बाहर से नहीं है। तो अपने को उच्च श्रेणी का वैराग्य रखना चाहिए। सारे पदार्थों से मन बुद्धि को हटा लेना चाहिए, ये उपरामता है। वैराग्य और उपरामता होने से निर्गुण ब्रह्म का ध्यान सुगम होता है। यदि अहंकार हटा लिया जाए तब तो कहना ही क्या है। वैराग्य रुपयों से नहीं मिलता है, सोना चांदी से नहीं मिलता है, बाजार में नहीं मिलता है, किसी वस्तु को देकर उसके बदले में नहीं मिलता है। ये तो सद्गुण है, इसका तो उपार्जन करना चाहिए। अहंकार और ममता ये दुख देने वाली चीज है। राग और द्वेष बहुत दुख देने वाली चीज है। दुख देने वाली चीज को भी छोड़ने में आप लोग संकोच करते हो, बड़ा आश्चर्य है। जैसे कोई सुई है वो आपके शरीर में चुभी हुई है, आप तकलीफ पा रहे हो, फिर भी उस सुई को आप शरीर से निकालते नहीं हो। ऐसे ही राग और द्वेष शूल के समान है, इनको आप निकालते नहीं हो, बड़ा दुख होता है। संसार में आपने सुख की कल्पना कर ली, इस कल्पना से कितना नुकसान हो रहा है। संसार में दुख तो सही है, वास्तविक है, और सुख की कल्पना है। वास्तविक चीज को स्वीकार नहीं करते, कल्पना को सच्चा मानते हो। विषय भोग की दृष्टि से किसी पदार्थ का उपभोग करो, वह नुकसान ही नुकसान देता है। सुख के संस्कार जो हृदय में बैठ जाता है वो बड़ी कठिनता से निकलता है। आज स्त्री का पुरुष में, पुरुष का स्त्री में जो आकर्षण है, उसे भारतवर्ष में कितना पाप हो रहा है। चोट खाते हैं फिर भी संभलते नहीं है। हमारी संस्कृति का कितना ह्रास हो रहा है, शरीर का ह्रास हो रहा है, विचारों का नुकसान हो रहा है, परमार्थ का नुकसान हो रहा है। कितने बड़े नुकसान के पत्थरों को लेकर डूबोगे पता नहीं है। चोट कर, चेष्टा कर फल खाने में संसार सुख बुद्धि की कल्पना धारण हो गई। यही अनर्थों का मूल है। भोग बुद्धि में, भोग बुद्धि से भोगने में सुख का भान होता है। यह अपने गले में अपने ही हाथ से छुरी मारने के समान है। संसार में जो सुख दिखता है वो, और भोग बुद्धि को छोड़ो, राग और द्वेष को छोड़ो, फिर इन्हीं पदार्थों का सेवन करो, आपकी मुक्ति हो जाएगी। गीता ने कहा है, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर् विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद नाम प्रसन्नता, प्रसन्नता का अर्थ आनंद, आनंद का अर्थ भगवान। स्वाद बुद्धि से भोजन करते हो, स्वाद बुद्धि से कपड़े पहनते हो, स्वाद बुद्धि से हर काम करते हो, ये स्वाद बुद्धि है, ये जहर है। सोने में भी आराम बुद्धि चाहिए, ये आराम बुद्धि विष है। आराम से नुकसान नहीं है, आराम के अंदर जो बुद्धि है कि हमको आराम मिले, ये जहर है। नींद तो आएगी, नींद लेनी पड़ेगी, पर ऐसा तकिया हो, ऐसा स्थान हो, ऐसे पंखे चले, ऐसा ठंडा मिले, ये बहुत खराब चीज है। पदार्थ के स्वरूप का त्याग का नाम वैराग्य नहीं है, अंदर से सुहावे नहीं, इसका नाम वैराग्य है। सत्संग में भी बैठते हैं तो मैं आराम से कैसे बैठूं, मेरे को आराम से कैसे हवा मिले, आराम से मेरे कोई तकलीफ न हो। ये आराम बुद्धि क्या है? ये आपके हृदय के अंदर शूल है। शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो अनुकूल पड़ता हो वो खाना चाहिए, ये भोग बुद्धि नहीं है। परंतु स्वाद लेकर, चक चक कर, अंदर में राजी हो करके जो खाते हो, ये विष खाते हो। खारी औषधि को अच्छे होने के लिए खाना पड़ता है, औषधि को कोई स्वाद बुद्धि से खाता है क्या? लेकिन परिणाम अच्छा होता है, इसलिए औषधि को कोई जहर नहीं बोलता है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों ने विषयों का नाम विष रखा है। वो डरते हैं, चमकते हैं, जरा सा कहीं आराम मिल गया, सुख मिल गया, मान मिल गया, बड़ाई मिल गई, डरते हैं, चमकते हैं। उनको मान बड़ाई सांपणी के समान लगती है, जैसे सर्पणी दिख जाए तो भगने की चेष्टा होती है। ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष जरा सी मान बड़ाई हो जाए भगते हैं, तड़पते हैं। उनके अंदर कितना आनंद है। अपने लोग तो मरते हैं, हमारा मान हो बड़ाई हो क्या फायदा, समय कितना खराब होगा। एक विरक्त आदमी को धूल में जंगल में मस्ती से पड़ा है, बढ़िया नींद आती है, और एक मखमल के गद्दे पर पड़ा है, वो करवटें बदलता रहता है, अनेक प्रकार की चिंताएं सताती रहती हैं। जो विरक्त को धूल में सोने में आनंद है, हम लोह की लकीर से कह सकते हैं, मखमल के गद्दे पर सोने वाले को वो सुख मिल ही नहीं सकता है। मखमल की गद्दी अच्छी लगती है, अनुकूल मालूम देती है, बस आपने दुख को पैदा कर लिया, यही तो आसक्ति है। विरक्त को वन की धूल में आनंद की लहर उठती है, उसको निवार के पलंग पर सोने से आनंद नहीं आता, इच्छा ही नहीं होती। जैसे कोई आदमी उल्टी करता है तो हमें घृणा होती है, ऐसे भोगों से उनको घृणा होती है। सोचो ये भोग क्या है, ये उल्टी है। बैरागी की दशा में वो कुटिया में पड़ा है, बैरागी की वृद्धि हो रही है, प्रत्येक क्षण में नई नई शांति पैदा हो रही है, वो शांति उल्टी चाटने वालों को कैसे मिलेगी। आप अच्छे पदार्थ खाए हुए हो, उल्टी हो गई, वहां कुत्ता आया, कुत्ता उस उल्टी को लप लप करके चाटता है, उस कुत्ते को उसमें सुख मिलता है। वैसा ही सुख यदि हम विषयों में देखते हैं तो हमारे में और उस कुत्ते में क्या अंतर है। विचार करके देखो, संसार से आपको, संसार के भोगों से आपको अक्षुण्ण सुख नहीं मिलेगा, वास्तविक सुख नहीं मिलेगा, चिरंतन सुख नहीं मिलेगा, सदा का सुख नहीं मिलेगा। वैराग्य सुख में और क्षणिक सुख में बहुत अंतर है। जितने हम हैं उतने में किसी को क्षणिक भी तो वैराग्य हुआ होगा, उस वैराग्य के सुख में जो सुख है वो भोगों में किसको मिला है, उसका मिलान किसके साथ करें, भोगों को वैराग्य के साथ कैसे मिलान करें। जिनको वैराग्य है ही नहीं, जानते ही नहीं कि वैराग्य का क्या सुख है, उनको क्या समझाए। वैराग्यवान के पास रहो, उनकी बात सुनो, प्रारंभ में समझ में नहीं आए तो बात मानो और फिर देखो कि सुख मिलता है कि नहीं मिलता है। अपने अपने खोटे तर्कों से जाने अपने अंतःकरण को कितना बिगाड़ रखा है। असल में तो वैराग्य का सुख भी माइक है, माया का ही है, परंतु तामसी से सात्विक श्रेष्ठ है। वैराग्य का सुख सात्विक है, परमात्मा की प्राप्ति का सुख इस सात्विक सुख से भी बाहर का है। पर सात्विक सुख तक तो आओ, सात्विक सुख तक आ जाओगे तो परमात्मा के सुख तक पहुंच जाओगे। किसी के मकान में जाना है तो पहले रास्ता तो पार करो और उसके मकान के बाहर तक तो आओ, फिर मकान में जाना सुगम है। इसी प्रकार सात्विक सुक्त पर आग्राट को आज लोगों की वृत्ति ताम से और राजसी सुख से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। ज्ञानी महात्मा तो सात्विक सुख का भी त्याग करता है। जो बातें तुम बैरागी की सुनते हो वे बातें अंदर में बैरागी होने पर देखो कैसे समुद्र में लहर के समान आपके हृदय के अंदर उमड़ती रहेंगी। बैरागी कोई नहीं जानते, उपरांतों को जानना और ही मुश्किल है। बैरागी से भी बढ़कर उपरांता है। मन हट जाए एकदम, संसार का चिंतन हट जाए, संसार के सुखों की कल्पना हट जाए, संकल्प रहित जो मन होता है उसी का नाम उपराम है। अपने अंदर झांक करके देखो, बाहर सोचने में इतना दिमाग लगाते हो कोई फायदा नहीं। अपने अंतःकरण में झांको, हमारी क्या दशा है, हम क्या चाहते हैं, हमारा कितना घाटा है, कितना नुकसान है। आप लोग बढ़िया हो, आप साल भर में अपना तलपट मिलाते हो, व्यापार में कितना नुकसान कितना लाभ, उसमें आपको जरा सा नुकसान कहीं दिखता है। एक सेठ के कई मील चलती है, कई मीलों में लाभ हो रहा है और कई मीलों में नुकसान हो रहा है, तो वो नुकसान के ऊपर ज्यादा विचार करेगा कि नुकसान क्यों है, किस कारण से है। अरे दूसरे मीलों में फायदा हो गया, उस फायदे को इधर ले आओगे नहीं, उसको संतोष नहीं होता, नुकसान क्यों हुआ। ये नुकसान तो आपका भाग्य के अनुसार है, पर ये आपका मन खराब हो रहा है, इसका नुकसान कौन भरेगा, कौन सी मील से भरोगे। इसलिए आपको अपने अंदर झांकना चाहिए कितना नुकसान हो रहा है। श्रेष्ठ शांति सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान में है, उनका ध्यान करो, आपको लाभ ही लाभ का खजाना मिलेगा। ये कहने की जरूरत ही नहीं रहनी चाहिए, ध्यान में आनंद मिलता है ये बात कहने की थोड़ा ही है, करने की होती है। त्रिलोकी का सुख भगवान के ध्यान के सामने कुछ भी नहीं है। सुख मानना तो दूर रहा, असली वैराग्यवान पुरुषों को बड़ी घृणा होती है। वे तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान सुख के माथे सिल पड़ो, सुख के ऊपर सिला पड़ो, पत्थर पड़ो, दुख आना चाहिए जीवन में। कुंती ने जानबूझ करके दुख मांगा है, अपने भतीजे से मांगा है, कृष्ण से मांगा है। वो जानती है कि साक्षात भगवान है, भगवान से सुख नहीं मांगा, आनंद भी नहीं मांगा, भगवान से कोई ये भी नहीं कहा कि तुम मुझे मिल जाओ, दुख मांगा। क्योंकि दुख के अंदर संसार को छोड़ने की इच्छा होती है और परमात्मा के ध्यान में आनंद ही आनंद रहता है। त्रिलोकी के आनंद, त्रिलोकी के भोगों का आनंद एक बूंद के समान भी परमात्मा के ध्यान में तुलना नहीं रखता है। जो सुख जिसको मिला है वो बतला नहीं सकता है। ध्यानावस्था का जो सुख है वो परमात्मा के प्राप्त होने के बाद वह भी माई की हो जाता है। ध्यान का सुख भी प्राप्ति अवस्था में समुद्र में एक बूंद के समान है, तुलना ही नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति ये अंतिम सुख है। ध्यान का सुख बुद्धि जनित है और खास सुख बुद्धि जनित नहीं है, वह तो बुद्धि में असली सुख का अंश मात्र है। एक भाई, उसे बड़ा सुख मिला, फिर वह तुच्छ सुखों में क्यों गिरता है? भर्तृहरि भारी राज्य को लात मारकर चला गया। आगे चलकर एक वेश्या का थूक था, उसको हाथ में ले लिया। फिर बिचारा है कि अरे बात ये थी कि भर्तृहरि राज्य छोड़ दिए, जंगल में रहने लगे। भिक्षा लेने जाते थे जंगल में से गांव में भिक्षा लेकर के रहते थे। ऐसे करते 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 कई दिन हो गए। वो गर्मी पड़ रही थी, एक दिन की बात, भर्तृहरि भिक्षा लेकर यूं आ रहे थे तो उनको दूर एक लाल मणि दिखाई दी। लाल मणि, सूरज की किरणें उसमें चमक रही थी। वो देखे कितनी बढ़िया लाल मणि है, ये लाल मणि मुझे मिल जाए फिर मैं इसको बेचूंगा, इसके खूब पैसे मिलेंगे, फिर इस गांव के अंदर भले आदमी के पास पैसा जमा करा दूंगा, उससे फिर सूद मिलेगा, ब्याज मिलेगा, उस ब्याज से मैं अपना काम चला लूंगा, रोज रोज यहां जाने आने का चक्कर मिट जाएगा। परंतु मेरे से पहले कोई दूसरा नहीं पहुंच जाए। चारों तरफ देखने लगा, खुद जल्दी जल्दी गए जाकर के, और उन्होंने वहां वो लाल मणि समझ के यूं हाथ उठाया, वो किसी का पान थूका हुआ था। तब कहा कि अरे कितनी मणियों को छोड़ करके मैं आया और अभी तक भी मेरे को वैराग्य नहीं हुआ है। वो थूक में हाथ कैसे गए, खराब हो गया उसका। बड़ी ग्लानी हुई। वो बात बता रहे हैं, भर्तृहरि भारी राज्य को लात मारकर चला गया। आगे चलकर एक वेश्या का थूक था, उसे मणि समझ करके हाथ में लिया तो बड़ी ग्लानी हुई, अपने को धिक्कार देने लगा कि धिक्कार है मेरे त्याग को, क्या फायदा यदि मैं ये लाल मणि समझता, यदि लाल मणि मैंने त्यागी है तो कितनी मणियां थी मेरे पास, लेकिन उनको त्यागने से क्या अंदर का तो भाव नहीं छोड़ा ना मैंने। बहुत रोए, बड़े बिलखे वो, और फिर भगवान से प्रार्थना की, ये क्या भोगों के संस्कार थे, इन संस्कारों को उसने जीवित किया, उसे पतन हुआ। दो भाई साथ साथ रहते थे, सिर में काम था, बाजार से दो अनार लाए, एक अनार पुराने जमाने से एक होकर तीन लाइन लिखी किताब है, बता बाड़िया भाई एक कर तीन लिखी है यूं, जो भी हो इतना पैसा, एक पैसा तीन पाई होना चाहिए, एक अनार एक पैसा तीन पाई का था, और एक अनार दो पैसा एक पाई का था। फिर लाकर के अपनी स्त्री को सवा दो रुपए वाला अनार दे दिया, और भाई की स्त्री को एक पैसा तीन पाई वाला अनार दे दिया। कितना गंदा व्यवहार किया, कोई पैसे में पाई में फर्क नहीं, चार पाई होती तो दो पैसा हो जाता, और पांच पाई होती तो सवा दो पैसा हो जाता, पर अंदर से मन कितना खराब कि अपनी स्त्री को सवा दो पैसे वाला अनार दिया और अपने भाई की स्त्री को पौने दो पैसे वाला अनार दिया। कितना गंदा और छोटा व्यवहार, शर्म आनी चाहिए, ऐसा व्यवहार कभी किया जाए? अपनी स्त्री को एक पैसा तीन पाई वाला अनार देता, अपने भाई की स्त्री को दो पैसा और एक पाई वाला अनार देता तो उसका हृदय कितना विशाल हो जाता। जरा सोच कर देखो परिणाम क्या होता है, आपस में राग द्वेष बढ़ गया। इसी प्रकार की आदत होने से बड़ा सुख छोड़कर छोटे सुख में हम लोग दौड़े चले जाते हैं। इस वृत्ति से नुकसान क्या होगा ये हम सोचते नहीं है। यही बात सब लोगों की हो रही है। एक पुरुष, उसकी दृष्टि स्त्री पर गई, फिर उसके मन में आया कि अरे कहां तो ध्यान का सुख और कहां ये स्त्री का सुख, तू तो पतन की तरफ जा रहा है। ऐसे ध्यान होते ही सावधान हो गया तो यहां दो सुखों की अंदर लड़ाई हुई। पहले का जो स्त्री का सुख भोगा हुआ था उस इस कारण से स्त्री में दृष्टि चली गई, और जब ध्यान का विचार आया तो विचार से ये दृष्टि दब गई। ऐसे अपने विचारों से पुराने संस्कारों की बुद्धि को दबाना चाहिए, इसी को दमन बोलते हैं। हम जितने यहां बैठे हैं वे पैसा खर्च करके आए हैं, सत्संग करते हैं, किंतु हमारी आदत को देखें तो बड़ी छोटी छोटी बातों के लिए हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। ये भी हमको मिल जाए, ये हमको मिल जाए। स्वार्थ के त्याग के व्यवहार से जो लाभ होता है वो लाभ स्वार्थ पूर्ति से हो ही नहीं सकता है। थोड़े से के लोभ से बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये लोभ और काम दोनों से बुद्धि जल्दी भ्रष्ट होती है। इसीलिए अच्छे महापुरुष होते हैं वे दो जगह बड़े सावधान रहते हैं, कंचन और कामिनी। जिस प्रकार थोड़े लोभ से बुद्धि खराब हो जाती है, थोड़े लोभ के कारण से बुद्धि रुपयों में चली जाती है, इसी प्रकार से संसार के सुखों के अंदर भी बुद्धि बहुत जल्दी बिगड़ने चली जाती है। इस बात को याद रखना चाहिए, आदत बहुत बिगाड़ चुके। एक छदाम में 100 में से 99 की वृद्धि, 99 की बुद्धि भ्रष्ट हुई हुई है आज के लोगों में। वह ये सोचता है कि थोड़ा भी सुख मिलता है इसको जाने क्यों दूं, यह भी मुझे मिल जाए, यह भी मैं मिल जाए। अरे थोड़े सुख को त्यागने में बड़ा सुख मिलेगा, लेकिन थोड़ा सुख भोग लोगे तो बड़ा सुख नहीं मिलेगा। महात्मा लोग उदाहरण देते हैं, एक आदमी के सामने हलवा रखा, वो अपने हाथ में हलवा लिया, हलवे में घी ज्यादा था, वो उसकी कोनी की तरफ बहने लगा। उसने देखा कि ये घी क्यों जाने दूं, वो उसको चाटने लगा। इतने में कौवे ने आकर के वो छीन लिया। अब ले चाट, तो इस घी को चाटने में रह गया और तेरा असली हलवा तो कौवा ले गया, ले खाओ। ऐसी दशा हो रही है, सोचते ही नहीं है, मूर्खता ही मूर्खता छाई हुई है। ध्यान के आनंद को छोड़कर कहां भोगों में फंस गए, स्वभाव को खराब कर लिया, इतना खराब कर लिया समझाने पर भी नहीं समझते। हमारे जितने काम हैं बिना परिणाम के सोचे करते हैं। यदि पतंगिये परिणाम पर विचार करें तो वो कभी आग में मरे ही नहीं। हम लोग उन पर हंसते हैं कि देखो पतंगा मूर्ख है, आग में पड़ गया, लेकिन ये नहीं देखते हमारी ये दशा है। हमको भी देख करके लोग, देवता लोग और दूसरे लोग आश्चर्य करते हैं। मनुष्य होकर भोगों का सुख, केवल देखने मात्र का सुख है, मिलने का सुख कुछ नहीं है। पतंगा केवल देखता है लेकिन उसमें चिड़चिड़ करते मर जाता है। आप लोग देखो अपने में जो व्यभिचारी पुरुष हैं उनकी कितनी बुद्धि मलिन है, कितना उनका नुकसान है, ये हम देखते हैं फिर भी हमारी दृष्टि बदलती नहीं है। ये विचार कर लें कि इसमें पतन है, तो बहुत जल्दी हम ऊपर उठ सकते हैं। क्यों नहीं उठते हैं? सुख बुद्धि के संस्कार ने हमारे इन वास्तविकता को ढक दिया। नर्तन पाए विषय मन दे पलटी सुधाते सट बिछले। जहर में जैसे वैराग्य होता है, क्योंकि जहर में पहले से ही सुख नहीं है, इसी प्रकार विषयों में पहले से ही सुख नहीं समझे तब तो काम बन जाएगा, पर विषयों का सुख लेकर के और फिर विषयों को दुखदायी समझोगे तो ये काम बनने वाली बात नहीं है। परमात्मा विषय का आनंद, ध्यान जनित आनंद के लिए लोग प्रयत्न करते ही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं परमात्मा का ध्यान लगाना बड़ा कठिन है, कठिन है, कठिन करने से निराश हो जाते हैं। हम कहते हैं ध्यान के आनंद की प्राप्ति में कठिनता नहीं है, आप इसको चाहते नहीं हो, संसार के सुख छोड़ते नहीं हो, ये कठिनता है। मन को भोगों से हटाओ। जैसे आप बच्चे को समझाते हो कि बेटा अभी तुम पढ़ लोगे तो आगे तुम्हारे बहुत ये पढ़ाई काम आएगी, लड़का खेल में सुख बुद्धि होने से विद्या सुख को नहीं चाहता, वो खेलना अच्छा मानता है। ऐसे ही आप अपने पाजी मन को समझाओ बालक की तरह, अरे मन तो इस सुख को छोड़ देगा, असली सुख मिलेगा, इस सुख में मत रम, कितने जोनियों से तू रमता आया है, अभी तक तेरी पूर्ति नहीं हुई है, कितनी बार तुमने जन्म ले ले करके इन सुखों को भोगा है, हर योनि में भोगा है, फिर भी तू नहीं चेतता है। बिल्कुल बालक के समान अपने मन को समझाओ। हमारा जो समय व्यतीत हो रहा है वो विचार करके देखो, मूर्खता में ही व्यतीत हो रहा है। एक बार वशिष्ठ ऋषि जा रहे थे, उनके साथ उनके शिष्य गण थे। एक मकोड़ी के पीछे मकोड़ा दौड़ रहा था, तो उस समय वो देख करके हंसने लगे। शिष्यों ने पूछा, महाराज क्यों हंसते हैं? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि ये मकोड़ा पहले इंद्र था और ये मकोड़ी इंद्राणी थी, फिर ये कई जोनियों में गए, परंतु अपने सुख बुद्धि के कारण से इंद्र योनि से आकर ये मकोड़े की योनि में आया है, कितना ऊंचा गया हुआ, कितना नीचा आया है। शिष्यों सावधान रहना, इस सुख के पीछे पड़े रहोगे तो तुमको भी बुरी दशा भोगनी पड़ेगी। यदि अच्छा काम करके उसको थोड़े में बेच दिया, ये मूर्खता है। ऊंचे से ऊंचे काम में समय बिताने वाला चतुर होता है। हमारे में थोड़े ही आदमी समय को काम में लाते हैं, वास्तव में हमारा समय जैसा बीतना चाहिए वो नहीं बीत रहा है। कितनी अमूल्य निधि आपके हाथ से खिसक रही है। हम अपने को समझदार मानते हैं, क्या यही समझदारी है? आधा घंटा सोने में खाने में लगा दिया, वह यदि सोचे कि इसमें हमारा फालतू समय कितना गया है, आपको खुद को पता चलेगा। खाने में, सोने में, बातों में, गप में बहुत समय बिता दिया, फिर आप कल्याण चाहते हो? आलस्य, भोग, प्रमाद, क्या आपने नहीं किया? साक्षात मौत है। समय तो फालतू गया ही, पर घोर नरकों को आपने और अपने पल्ले में बांध लिया, भविष्य में आपने कितना नुकसान किया। हमारा थोड़ा समय व्यर्थ चला जाए तो बड़ी चिंता होनी चाहिए। प्रमाद, आलस्य, घर में चोर पड़ गए तो लोग देते हैं, अब हमारा डाका पड़ेगा, घबराते हैं। लेकिन ये आलस्य प्रमाद हमारे अंदर चोर से कम है क्या? इनसे डरते ही नहीं। हमारी बेगर्जी से परमात्मा प्राप्त नहीं होते हैं, हमें गर्जी नहीं, वो तो बेचारे शीघ्र मिलने के लिए तैयार हैं। हमारे भजन में चटपटी देखें तो भगवान हमारे भजन का मूल्य समझते हैं। बेगार काटते हैं उसको भी समझते हैं, भगवान बेगर जी हो रहे हैं। प्रेम वाला भजन का ठेका नहीं करता कि कितना भजन करना पड़ेगा, कितनी देर बैठूं, कितना कैसे बैठूं, ऐसा नहीं देखता है। वो चाहता है कि मेरे से केवल भगवान का भजन हो, भगवान का नाम हो, कितना कैसे, ये सब बातें उसके दिमाग में आती नहीं। वो ये भी नहीं जानता कि मैं तो प्रेम करता हूं, भगवान नहीं करते। वो यही समझता है मेरा भगवान में प्रेम कैसे हो, बस मेरा भगवान में प्रेम कैसे हो, मुझे भगवान पीछे मिले लेकिन प्रेम मुझे पहले मिलना चाहिए। यानी वो भगवान के प्रेम के लिए सब कुछ कर सकने के लिए तैयार है, वो भगवान के प्रेम के लिए अपना सिर भी फोड़ लेने के लिए तैयार है। और उसको कहे कि देखो तुम सिर फोड़ लो, भगवान का प्रेम मिल जाएगा, वो सस्ता मानता है, वो सस्ता मानता है। अरे सिर फोड़ने से भगवान मिले, बड़ा सस्ता काम। राज का सिपाही लाठी लेकर काम करने, लाठी लेकर काम कराए उतना ही काम करते हैं। उसी प्रकार जब तक सत्संग होता है तब तक बैठते हैं, नहीं तो अपने अपने घर जाकर आराम से पसर करके सो जाते हैं। भजन में प्रेम का है, भजन करता है प्रेम के लिए। प्रेम जो है वो बेगार काटने से नहीं मिलता, बेगारी मजदूर को इनाम नहीं मिलता, बल्कि उसका वेतन काट लिया जाता है। इसी प्रकार हमारी बेगारी, भजन साधन से भगवान इनाम नहीं देते, वेतन काट लेंगे, भगवान उसकी सुध नहीं लेते। प्रेम आदर से भजन करें तो देखो भगवान खुश हो जाए। हम तो कहते हैं बाबा कितना भजन करना पड़ेगा, कितने दिन में भगवान मिलेंगे, वो देखते हैं भगवान मिल मिला कर एक बार पिंड छूट जाए, फिर हम हमारे मर्जी आए जैसे करें। ये साधन थोड़ा ही है। कई लोग तो सोचते हैं परमात्मा की प्राप्ति में भजन करना तो दंड है, ये दंड हम तो नहीं भोगेंगे। कैसी कैसी लोगों की बुद्धि हो रही है। यदि प्रेम भजन साधन जोर से करो तो हमें पहले भगवान से मिलना चाहते हैं तो भगवान हमसे मिलने की चेष्टा करेंगे। जो भजन का ठेका मानता है भगवान उससे दूर भाग जाते हैं। प्रेम करने से साधन में सुख और भगवान शीघ्र मिलते हैं। कम दामी भजन में हमारा भी मन नहीं लगता, भगवान समझते हैं ये तो आफत समझ करके भजन करता है, तो आफत का फल तो आफत ही होगा। प्रेम के भजन करने में भगवान हमसे मिलने की खुशामद करते हैं, वो कहते हैं कि आओ मेरे से मिलो, मैं मिलने के लिए तैयार। प्रेमी लोग कहते हैं हमारे पास आपसे प्रेम करने की तो फुर्सत है, आपसे बात करने की मिलने की फुर्सत नहीं है। भगवान कहते हैं मेरे से मिलो, मुझे चैन नहीं है। कह नहीं, हम नहीं मिलते, हम आपसे नहीं मिलते। देखो भगवान को भी गरज करनी पड़ती है। खूब प्रेम पूर्वक साधन करो, शांति और आनंद मिलेगा। प्रेम के साधन को ध्यान में, ध्यान से मदद मिलती है। और क्या बात है, प्रेम पूर्वक भजन साधन करोगे तो भगवान ऐसे आपके पास आएंगे, आप भगवान को धक्का दोगे तो भी वो नहीं जाएंगे। संतों के शब्द देखो आप। इसलिए मन के पाजीपने को मिटाओ। भगवान कहते हैं तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। अर्जुन को निमित्त बनाकर अपने सब को कह रहे हैं भगवान। इसलिए श्रद्धा और तत्परता से ऐसा ऊंचा साधन करना चाहिए, उसमें प्रत्यक्ष आनंद है, बड़ी शांति है। जितने सांसारिक सुख हैं वे सब त्यागने योग्य हैं। वैराग्य हृदय लगाने योग्य है। संसार छिटकाने योग्य है। राग माने आसक्ति होने से दामी भजन बन नहीं रहा है। चेष्टा करो, आगे बढ़ो। मानुष शरीर का श्वास है तब तक आप में शक्ति है। ये श्वास निकल जाएंगे फिर आपको भजन की बात समझ में क्या, सुनने में क्या, आप सब कुछ भी नहीं जान पाओगे। संसार की आसक्ति फांसी है, इस फांसी से हटो। ये जहर है, मत खाओ। ये आराम में समय नष्ट कर रहे हो, संस्कार खराब हो रहे हैं। ऊंचे उठो, आगे बढ़ो। यह सर्वत्र अनभिष्णेय है, कहीं पर भी राग मत रखो। अच्छे बुरे बहुत मिलेंगे, किस किस के साथ आप राग करोगे, किस किस के साथ द्वेष करोगे, आपके जीवन में कई अच्छे बुरे मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। आप अपनी मस्ती में चलो, भगवान के मिलने में देरी मत करो। प्रेम संसार से हटाकर प्रेम परमात्मा में करो। आपके पास प्रेम एक बहुत अमूल्य चीज है, बहुत उत्कृष्ट चीज है, उसको यही मत गुमाओ। परमात्मा के लिए स्वार्थी बनो। परमात्मा प्राप्ति मेरा सबसे बड़ा स्वार्थ है, ऐसे स्वार्थी बन जाओ, भगवान को बुरा नहीं लगेगा। हमारे प्रेम होने में अपने आप संभाल लेंगे, भगवान पर विश्वास करो। और आपस का व्यवहार भगवान के साथ व्यवहार हो रहा है ऐसा समझ करके प्रेम का बर्ताव करो, और अंत में आप प्रेम स्वरूप भगवान में लीन हो जाओगे। राम, देखो कर्णवास में सत्संग किया था ना, तो भाई जी को इतना वैराग्य हो गया था कि कहने लगे, सेठ जी के पास आए कि सेठ जी अब मैं तो बोरिया बिस्तर लेकर के गोरखपुर से आ गया हूं, अब मैं कल्याण का काम नहीं देखूंगा। इतने बढ़िया प्रवचन आपके, आप कहते हो कि भगवान के भजन में लग जाओ, भगवान के भजन में ही लगना चाहता हूं, मेरे से ये काम नहीं होगा। सेठ जी ने खूब समझाया, फिर बाद में वापस गोरखपुर आ गए। इन प्रवचनों का इतना असर पड़ा, महाराज जी भी स्वयं बताते थे कि ये प्रवचन सेठ जी ने कर्णवास में दिए, हमारा भी सौभाग्य था, हमने भी सुना। तो उस समय सब लोगों की एक अलग ही स्थिति बनी हुई थी, और सेठ जी ने भी, अब सेठ जी तो हरदम ही ऐसी अच्छी अच्छी बातें बोलते थे, पर कर्णवास का सत्संग बहुत लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा, ऐसी बात थी। कीर्तन आज दोपहर में गीता जी का पाठ है।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण।